इस्लामी क्रांति और समाज।
प्रिय श्रोताओं, ईरान की इस्लामी क्रांति के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक नई कार्यक्रम श्रृंखला की पहली कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं मोहम्मद मेहदी
और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, ये श्रृंखला 26 कड़ियों की होगी और इसमें समाज शास्त्र में क्रांति के दृष्टिकोणों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ईरान की इस्लामी क्रांति के प्रभावों की चर्चा की जाएगी।
20वीं सदी को क्रांतियों की सदी कहा जा सकता है। इस शताब्दी की पहली क्रांति वर्ष 1917 में रूस में आई थी और उसके बाद चीन, क्यूबा, ईरान और निकारागुआ में एक के बाद एक क्रांतियाँ आती गईं। लेकिन निश्चित रूप से इस सदी की सबसे अलग और अहम क्रांति ईरान की इस्लामी क्रांति थी, जो वर्ष 1979 में आई। इस क्रांति ने 2500 साल एक पुरानी तानाशाही व्यवस्था को जो जड़ से उखाड़ फेंका ही, और साथ ही इसने समाज शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ज्ञान में प्रचलित विचारों व दृष्टिकोणों को परखने के लिए एक उचित कसौटी भी उपलब्ध करा दी।
वस्तुतः इस क्रांति ने केवल एक शासन व्यवस्था के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को ही नहीं बदला, बल्कि सामाजिक ज्ञान व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ज्ञान के आधारों को भी हिलाकर रख दिया। ये क्रांति अन्य देशों में सामाजिक आंदोलनों और मुसलमानों के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए आदर्श बनने के साथ ही समाज शास्त्रियों व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारों व दृष्टिकोण पेश करने वालों का ध्यान आकर्षित करने में भी सफल रही। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने वर्ष 1995 में तेहरान की नमाज जुमा के खुतबों में ईरान की इस्लामी क्रांति के अभूतपूर्व होने की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये क्रांति वास्तव में बेजोड़ थी। वास्तव में इसमें और अन्य क्रांतियों में अंतर था। ये अंतर क्रांति आने की शैली में भी देखा जा सकता है और जनता को क्रांति के लिए उठ खड़े होने के लिए मिलने वाली प्रेरणा में भी देखा जा सकता है।
श्रोताओं, ईरान की इस्लामी क्रांति को सफल हुए लगभग 40 साल पूरे हो रहे हैं और इस्लामी गणतंत्र ईरान धीरे धीरे अपनी 40वीं वर्षगांठ के निकट होता जा रहा है। ईरान की इस्लामी क्रांति अनेक आयामों से एक विशेष व प्रभावी क्रांति समझी जाती है। संसार की अन्य बड़ी क्रांतियों से इस क्रांति का एक प्रमुख अंतर इसके द्वारा बड़ी शक्तियों की भूमिका को समाप्त करने से संबंधित है। पिछले 150 वर्षों में बड़ी शक्तियां ईरान की नीतियों को दिशा निर्देश देने में मुख्य भूमिका निभाती रही हैं। बड़ी शक्तियां अपने बीच समझौते करके ईरान को बांटती रही हैं।
वर्ष 1907 में रूस और ब्रिटेन के बीच होने वाला समझौता, जिसके अंतर्गत ईरान को 3 भागों में बांट दिया गया था, ऐसा ही एक अहम समझौता था। 1919 में ईरान व ब्रिटेन के बीच होने वाला समझौता भी इसी प्रकार का एक समझौता था, जिसके अंतर्गत ईरान के सभी आर्थिक व सामरिक मामले और रेलवे का संचालन ब्रिटेन की देखरेख में दे दिया गया था और इस प्रकार ईरान एक पश्चिमी शक्ति के अधीन हो गया था। ईरान में पश्चिमी शक्तियों के हस्तक्षेप का चरम बिंदु अमेरिका व ब्रिटेन के षड्यंत्र से वर्ष 1332 हिजरी शमसी में होने वाला विद्रोह था, जिसके अंतर्गत मोहम्मद मुसद्दिक की कानूनी सरकार को गिरा दिया गया था। इस विद्रोह के बाद अमेरिका ईरान में मुख्य खिलाड़ी बन गया और उसने ईरान के सभी मामलों पर नज़र रखना आरंभ कर दिया। अमेरिकी सरकार शाह का भरपूर समर्थन करके और कैपिटुलेशन जैसे विषयों को ईरानी राष्ट्र पर थोप कर ईरान की नीति निर्धारक बन गई और अपने भौतिक हितों को ईरान की तेल की आय से पूरा करने लगी।
ईरान में अमेरिका के अंतिम राजदूत विलियम हिली सुलिवान अपनी किताब मिशन टू ईरान में इस देश में अमेरिका की उपस्थिति के बारे में लिखते हैं। ईरान व अमेरिका के संबंधों के बारे में दो बातों ने मुझे सबसे अधिक चिंतित कर रखा था। पहली बात, ईरान में हमारी गतिविधियों की शैली और इस देश को हथियार और सैनिक उपकरणों की बिक्री थी। ईरान में हमारे सैन्य सलाहकारों ने ऐसे स्थिति में काम शुरू किया था कि अमेरिका की मूल नीति को हथियारों और सैन्य उपकरणों की असीम बिक्री पर आधारित थी, जो 70 के दशक में तय हुई थी। उस समय ईरान में हमारा सैन्य प्रतिनिधिमंडल मुख्य रूप से इस देश के लिए हथियारों की खरीदारी के एजेंट की भूमिका निभा रहा था। काम का तरीका यह था कि ईरानी अधिकारी अमेरिकी सलाहकारों से परामर्श के बाद अपने हथियारों का ऑर्डर देते थे और अमेरिकी सैन्य टीम उन हथियारों को खरीदकर ईरान के हवाले करती थी। इन हथियारों के पैसे ईरान के तेल की बिक्री से अदा किया जाता था और ये कोई समस्या वाली बात नहीं थी।
मध्य पूर्व और विशेष रूप से ईरान के इतिहास के विशेषज्ञ यरवांद अब्राहिमियान अपनी किताब ईरान बिटवीन टू रिवॉल्यूशंस या ईरान दो क्रांतियों के बीच, इसमें पहलवी शासन में अमेरिका से ईरान के संबंधों को विशेष संबंधों के रूप में याद करते हैं। वर्ष 1789 में फ्रांस की क्रांति और वर्ष 1917 में रूस की क्रांति ऐसी स्थिति में आई थी कि इन दोनों देशों की सरकारों को विदेशी समर्थन हासिल नहीं था, लेकिन ईरान में शाह की सरकार को विदेशी शक्तियों विशेषकर अमेरिका का भरपूर समर्थन प्राप्त था। इसके बावजूद फरवरी सन 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हुई।
इन परिस्थितियों में ईरान की इस्लामी क्रांति न केवल ये कि बड़ी शक्तियों द्वारा ईरान की तानाशाही सरकार के समर्थन के बावजूद सफल हुई, बल्कि वो पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉकों के सामने भी डट गई। पूर्व सोवियत संघ व अमेरिका के नेतृत्व में संसार पर पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉकों के वर्चस्व और क्षेत्र पर व संसार पर सभी घटनाओं और राजनैतिक, आर्थिक और सामरिक मामलों पर इनका अधिकार होने के बावजूद ईरान के क्रांतिकारी नेताओं ने देश की विदेश नीति के लिए न पूर्व न पश्चिम के नारे की घोषणा की। इस नीति की घोषणा के साथ ही ईरान विश्व व्यवस्था के दो बड़े मोर्चों के मुकाबले पर आ गया। इस तरह स्वाधीनता इस्लामी क्रांति का एक मूल नारा बन गया, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस्लामी क्रांति एक स्वाधीन व्यवस्था थी जो संसार के विचारकों और अहम लोगों के लिए ध्यान योग्य बात थी। यही बात पश्चिमी शक्तियों विशेषकर अमेरिका की ओर से इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ चार दशक बाद भी दुश्मनी जारी रहने बल्कि उसमें वृद्धि का मुख्य कारण है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस्लामी क्रांति से पहले और बाद के ईरान में मुख्य अंतर स्वाधीनता का है।
ईरान और संसार की अन्य बड़ी क्रांतियों के अस्तित्व में आने के संबंध में एक अन्य अंतर क्रांति के नेतृत्व से संबंधित है। इस्लामी क्रांति का नेतृत्व धर्मगुरुओं के हाथ में था और उनके बारे में और उनकी वैचारिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक विशेषताओं के बारे में उस समय के राजनीतिज्ञों और विश्लेषकों को अधिक ज्ञान नहीं था। इस बीच इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का नेतृत्व ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता का मुख्य कारक था। इस्लामी क्रांति का नेतृत्व एक करिश्माई व्यक्ति के हाथ में था जो वरिष्ठ धर्मगुरु भी था। ईरान के लोग एक ऐसे नेता के अधीन रहकर आंदोलन कर रहे थे जिसका व्यक्तित्व अत्यंत व्यापक था, अर्थात इमाम खुमैनी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ धार्मिक व नैतिक व्यक्तित्व के भी स्वामी थे।
यरवांद इस बारे में लिखते हैं, दो बातें आयतुल्ला खुमैनी की निर्णायक भूमिका और व्यापक लोकप्रियता को स्पष्ट कर सकती हैं। पहली बात उनका व्यक्तित्व, विशेषकर उनका सादा जीवन और शैतान जैसे अत्याचारी से समझौता न करने की विशेषता है। एक ऐसे देश में जिसके अधिकतर राजनीतिज्ञ आराम और ऐश्वर्य में जीवन बिता रहे थे, आयतुल्ला खुमैनी अत्यंत सादा जीवन बिता रहे थे और आम लोगों की तरह उनके जीवन में ऐश्वर्य नहीं था। एक ऐसे समाज में जिसके राजनेता हजारों चेहरे वाले, जोड़ तोड़ करने वाले, अपने परिजनों का ही ध्यान रखने वाले और कभी न सुधरने वाले थे, आयतुल्ला खुमैनी ने बड़ी कड़ाई से उनके साथ किसी भी तरह का सौदा करने से इनकार कर दिया था और उनका कहना था कि अगर उनके बच्चे कोई ऐसा काम करें जिसकी सजा मौत हो तो वे उन्हें भी मृत्युदंड दे देंगे। वे भौतिक शक्ति हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि ईश्वर के प्रिय बंदों की तरह आध्यात्मिक शक्ति के लिए काम करते थे।
यरवान कहते हैं कि आयतुल्ला खुमैनी के उच्च स्थान को स्पष्ट करने वाली दूसरी बात उनका करिश्माई अस्तित्व, विशेषकर एक बड़े राजनीतिक व सामाजिक तबके के नेतृत्व में है। वे शासन की आलोचना में ऐसे विषयों पर उंगली उठाते थे जो सभी वर्गों और धड़ों की अप्रसन्नता का कारण होते थे, जैसे पश्चिम को दी जाने वाली विशेषताएं, इसराइल के साथ गुप्त और परोक्ष संबंध, हथियारों की खरीदारी पर होने वाला व्यर्थ खर्च, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार, कृषि विभाग में फैली मंदी और धनवानों और निर्धनों के बीच बढ़ता अंतर इत्यादि। इस प्रकार आयतुल्ला खुमैनी ने आम लोगों की अप्रसन्नता और परेशानी के विषयों के खिलाफ सशक्त ढंग से आवाज उठाकर विभिन्न सामाजिक गुटों को अपने साथ कर लिया था।
ईरान और संसार की अन्य बड़ी क्रांतियों के बीच एक अन्य अंतर इसके द्वारा संसार में पेश की गई एक नई शासन व्यवस्था है। इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले संसार पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉकों में बटा हुआ था। यहां तक कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन भी इसके सदस्यों को इन दो ब्लॉकों से बाहर नहीं निकाल सका। इस्लामी क्रांति से पहले ईरान अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक का भाग था, लेकिन क्रांति आने के बाद ये स्थिति बदल गई और ईरान ने इस्लामी गणतंत्र ईरान के नाम से एक नई शासन व्यवस्था का परिचय कराया। ये शासन व्यवस्था एक आदर्श और मॉडल में परिवर्तित हो गई और वर्ष 2011 में अरब देशों में जो जन आंदोलन हुए उनमें ईरान की इसी शासन व्यवस्था को आदर्श बनाया गया। श्रोताओं, अगली कड़ी में भी ईरान और संसार की अन्य बड़ी क्रांतियों के बीच पाए जाने वाले कुछ अन्य अंतरों पर प्रकाश डालेंगे।